मधुशाला की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने बात की थी स्वर्ग और धरती की अप्सराओं की, रंभा की, अप्सराओं के साथ यज्ञ की, सोमसुरा की, और एक शब्द के बारे में बताया था, द्रोण कलश। आज कुछ बातें स्वाभिमान की, कुछ संकोच की, कुछ पहली हिचकिचाहट की। और यदि इंसान में सामर्थ्य हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसकी कविताओं के पीछे छिपे भावार्थ की, कुछ मधुशाला और बच्चन जी के जीवन से जुड़े किस्से कहानियों की। तो चलिए आज के अंक को शुरू करते हैं। कहते हैं कि लुढ़कते रहने वाले पत्थरों पर काई नहीं लगती, जैसे कि रोलिंग स्टोन्स, और रुके हुए पानी में मच्छर पैदा नहीं होते, इसलिए जीवन का नियम है चलते जाना। अब आज की पहली कविता सुनते हैं। बार बार मैंने आगे बढ़, बार बार मैंने आगे बढ़, आज नहीं मांगी हाला, समझ ना लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला। यानी अगर मैंने बार बार आगे बढ़ के हाला नहीं मांगी तो इसकी वजह से मुझे कोई साधारण पीने वाला मत समझ लेना। बार बार मैंने आगे बढ़, आज नहीं मांगी हाला, समझ ना लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला। हो तो लेने दो ऐसा की दूर प्रथम संकोचों को। यहां कवि कहते हैं कि साकी मेरी शुरुआती हिचकिचाहट को, प्रथम संकोचों को, जो इनिशियल हेजिटेशन होती है, उसको पहले दूर हो जाने दो, फिर देखो क्या होता है। हो तो लेने दो ऐसा कि दूर प्रथम संकोचों को, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। कवि कहते हैं कितनी बार मैं आगे बढ़ा किंतु हिचकिचाता रहा कि हाला मांगू या नहीं मांगू, और इस उहापोह में कभी मांग ही नहीं पाया, किंतु इस कारण से मुझे कोई साधारण शर्मीला पीने वाला मत समझ लेना। एक बार मेरी शुरुआती हिचकिचाहट निकल गई तो बस सारी मधुशाला में मेरी ही आवाज गूंजेगी। अब इन पंक्तियों में एक भाव प्रेम में संकोच का है, जैसे शुरुआत में हिचकिचाहट होती है, मगर एक बार प्रेमी उससे आगे निकल जाए तो फिर क्या नहीं कर गुजर जाए। यहाँ ओशो और बच्चन जी के बीच का एक हल्का फुल्का तर्क वितर्क याद आता है। बच्चन जी ने उन्हें अपनी कविता सुनाई, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये कविता सुन के ओशो ने कहा कि प्रेमी ने खड़े रहकर ही गलती कर दी, उसे तो सीधे प्रेमिका के द्वार पर जाकर दस्तक देनी थी। इसके उत्तर में बच्चन जी ने एक और कविता सुनाई थी, किंतु वो कहानी विस्तार से किसी और एपिसोड में सुनाते हैं। बहरहाल यहाँ मधुशाला के संदर्भ में ठीक ही कहा है। कई सारी शुरुआती दिक्कतें थी जब मधुशाला की पहली किताब प्रकाशित करवानी थी, इसकी कहानी हमने सुनाई थी एपिसोड 15 में। लेकिन एक बार मधुशाला प्रेस से प्रकाशित होकर निकल गई तो देखिए कैसे लाखों लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, उसके शब्द और सुर आज तक गूंज ही रहे हैं। और जरा सोचिए, मधुशाला लिखी गई थी 1933 में, प्रकाशित हुई 1935 में, किंतु आज भी अभी हाल ही में पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी के कुछ पॉलिश छात्रों ने मधुशाला को गाकर उसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया है और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ है। उसको स्वयं अमिताभ बच्चन ने शेयर किया, उसका लिंक हम यहीं शो नोट्स में देते हैं, आप भी सुनिएगा। और इतना ही नहीं, अब तो हम मधुशाला पर पॉडकास्ट भी बना रहे हैं, और इस पॉडकास्ट को ही करीब 2 लाख लोग अब तक सुन चुके हैं, और उन सबको बहुत बहुत विनम्र धन्यवाद। अब इस कविता में एक भाव स्वाभिमान का भी है, जैसे कि मधुशाला का प्रेमी साधारण तो हो नहीं सकता, यानी कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के पीछे जाता है वो साधारण कैसे हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति कुछ भी मांग कर क्यों ले, याचना करके क्यों ले। वह तो अपनी सामर्थ्य और अधिकार के बल पर लेगा। और स्वाभिमान की बात पर मेरी एक बहुत ही प्रिय कविता है, जिसका शीर्षक है अमित सामर्थ्य मुझ में। इसकी शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह हैं, है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा, रुद्र हूं विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूंगा। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूंगा। मार दी ठोकर विभव को, बन गया क्षण में भिखारी, किंतु फिर भी जल रही क्यों द्वेष से आंखें तुम्हारी। मार दी ठोकर विभव को, बन गया क्षण में भिखारी, किंतु फिर भी जल रही क्यों द्वेष से आंखें तुम्हारी। आज मानव के हृदय पर राज जब मैं कर रहा हूं, फिर क्षणिक साम्राज्य की भी कामना मैं क्यों करूंगा। आज मानव के हृदय पर राज जब मैं कर रहा हूं, फिर क्षणिक साम्राज्य की भी कामना मैं क्यों करूंगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। इस कविता को पूरा आप YouTube पर सुन सकते हैं, उसका लिंक भी मैं यहीं नोट्स में देता हूं। अब जब कवि शुरुआती संकोच और हिचकिचाहट से आगे बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं कि संकोच करके क्या पाया। जीवन की मधुशाला एक ही बार मिलनी है, तो संकोच करके व्यर्थ क्यों किया जाए। यानी जो जी में आए, जिससे मन खुश हो, वो कर डालो। बकेट लिस्ट बना के मत रखो, वरना बकेट में क्या होगा, जंग लग जाएगा। और बकेट में जंग लग गया तो वो लिस्ट पानी की तरह ही बह जाएगी। इंग्लिश का एक बड़ा सुंदर गाना है ना,
There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.
इसे भी आप YouTube पर सुनिएगा। किंतु इसीलिए कहते हैं कि जो करने आए हो, कर डालो निसंकोच, निसंदेह, निडरता के साथ। अब संकोच के विषय में एक और बात है। अब से 10-20 वर्ष पहले तक इंट्रोवर्ट होने को एक कमजोरी समझा जाता था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इंट्रोवर्ट होना सम्मान की बात समझा जाने लगा है। यहां तक कि आजकल लोग अपने परिचय में, सीवी में, बायोडेटा में बड़ी शान के साथ लिखते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जो हैं, जैसे हैं, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचाने, उसके अनुसार कर्म करें और संसार में अपना एक अलग स्थान बनाएं। वैसे आप सोचकर बताइएगा कि इंट्रोवर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे। तब तक अगली कविता सुन लेते हैं। आज मिला अवसर तब फिर, क्यों मैं न छकूं जी भर हाला। आज मिला मौका तब फिर, क्यों ढाल न लूं जी भर प्याला। यानी आज अवसर मिला है, मौका मिला है, तो मैं जी भर के हाला क्यों ना पी लूं, मैं जी भर के प्याला क्यों ना भर लूं। आज मिला अवसर तब फिर, क्यों मैं न छकूं जी भर हाला। आज मिला मौका तब फिर, क्यों ढाल न लूं जी भर प्याला। कई बार शादियों और पार्टियों में देखा होगा ना, जब मुफ्त में ड्रिंक्स मिलते हैं तो लोग कैसे जी भर के प्याला भरते हैं, कैसे जी भर के हाला पीते हैं। वही बात है कि जब मौका मिला है तो क्यों ना ये सब कर लिया जाए। आगे कहते हैं, छेड़ छाड़ अपने साकी से, आज ना क्यों जी भर कर लूं। यानी साकी से छेड़छाड़ की बात है, अपना ही साकी है तो छेड़छाड़ क्यों ना हो। छेड़ छाड़ अपने साकी से, आज ना क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की यह मधुशाला। छेड़ छाड़ अपने साकी से, आज न क्यों जी भर कर लूं, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की यह मधुशाला। यानी ये जो जीवन रूपी मधुशाला है, एक ही बार मिली है। यहां एक बहुत ही सुंदर फिलोसॉफिकल मैसेज है कि एक ही जीवन है, जीवन एक ही बार मिला है। 84 लाख योनियों से निकलने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है, और जब एक ही बार जीना है तो क्यों ना जी भर के जिया जाए। स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट लिविंग। या जैसे हम कहते हैं, लाइफ आफ्टर ऑल इज ए लॉन्ग वीकेंड। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो कल करना है आज कर लो, जो आज करना है अभी कर लो। एक पल में प्रलय आ गई तो बाद में क्या करोगे। किंतु यहां पर एक डिस्क्लेमर दिए देते हैं कि भाई, साकी बाला से छेड़छाड़ अपनी खुद की जिम्मेदारी पर करें। डू नॉट ट्राई दिस एट होम और आउटसाइड। और फिर भी आज में जीने के नाम पर कुछ करना है तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। आज यहीं विराम। अगले अंक में सुनाएंगे एक कहानी बच्चन जी के पिताजी की, कि कैसे उन्होंने एक बार लाठी उठाकर एक बड़े धार्मिक दंगे को भड़कने से रोक लिया था। और एक बात ये कि बच्चन जी और उनके पिता के बीच किस तरह के तर्क होते थे, उनमें मौन का क्या महत्व था। और सुनाएंगे एक कविता जहां मधुशाला साम्यवाद के बारे में कुछ कहती है। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। इसे आप रिव्यू कर सकते हैं एप्पल या स्पॉटिफाई पर। और हाँ, हम हर रविवार को मधुशाला का एक लाइव सेशन भी करते हैं, उसका लिंक भी शो के नोट्स में दिया हुआ है, कभी जुड़िएगा। तो अगले अंक तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, चाय कॉफी पीते रहें और जीवन को लॉन्ग वीकेंड की तरह सेलिब्रेट करते रहें।